जी कौन है? श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास और नरोत्तम ठाकुर दोनों जीव गोस्वामी के यहाँ पढ़े थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था। इन्होंने वृंदावन में रह करके इनसे अध्यात्म मैंने अध्ययन किया था सब शास्त्रों का।
जीव गोस्वामी जी से श्रीनिवासाचार्य
श्यामानंद ये श्रीनिवास जी के शिष्य थे, ये गोविंद जी
और रामचंद्र स्वामी
दोनों। रामचंद्र जी बड़े भैया थे, छोटे भैया ये थे,
ये दोनों भाई
बड़े अच्छे कवि थे, जैसे तुलसीदास सूरदास ये कवि थे। ये मैं समझता हूँ कि बड़े उच्च कोटि के ये भी थे, ये लोग वात्सल्य के और दास्य भाव के ये कवि लोग हैं, और ये थे मधुर रस के कवि। तो पहले ये केवल दुर्गा जी के संबंध में, काली जी के संबंध में कविता लिखते थे, और उसमें बंगाल में इनका बड़ा नाम था। रामचंद्र जी कहते थे, देखो तुम इनकी उपासना छोड़ करके राधा जी और कृष्ण की उपासना करो, किंतु छोड़ते नहीं थे। एक बार बड़े जोर से बीमार पड़े, ऐसा बीमार जब मरे, बचने की कोई भी संभावना नहीं। तो उन्होंने अपने भैया को बुलाया, मैंने रामचंद्र जी को बुलाया, रामचंद्र खां को, तो वो गए और जो अब तो मैं मरूंगा, अब मैं बच नहीं सकता, मैं क्या करूं? अरे तो मर रहा है, मेरी बात तो मान, आज से तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये करो और राधा कृष्ण को अपना इष्ट मानो और हमारे गुरु जी से ही दीक्षा लो, चैतन्य महापुर के परिसर में आओ। उन्होंने कहा कि जब मर ही रहा हूं तो तुम कर रहे हो तो मैं ये भी देख लूं। तो उन्होंने उच्चारण किया, उन्होंने आगे कहा पीछे से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और कहते कहते उनके शरीर में न जाने क्या चेंज हुआ, एक स्पंदन हुआ, जैसे बिजली का करंट लगता है और ऐसे करंट लगा। साथ ही साथ में देखा जी धीरे धीरे वो ठीक हुए, दो चार दिन में एकदम ठीक हो गए। उन्होंने कहा अब एक बात करो, अब राधा कृष्ण के संबंध में पत्र लिखो, महाप्रभु के संबंध में पत्र लिखा दो और जी गोस्वामी के यहाँ भेजो, ये सुन करके बड़े प्रसन्न होंगे। इन्होंने ये पद लिख करके महाप्रभु जी का वर्णन, ये कौन थे, उनका तत्व तो क्या है, और जीव गोस्वामी के पास में जीव गोस्वामी ने कहा जी आज से तुम कवि रत्न हुए, कवियों में सबसे रत्न हुए, और उनको गोविंद कविराज की उपाधि दी, कवियों में राजा सम्राट चक्रवर्ती, ये पद उन्होंने ही, और जीव गोस्वामी ने उसको भी समर्थन किया था। तो वही कह रहे हैं, जय सचि जय नंदन नंदन गोपी जाना बल, नंदनंदन, किंतु नंदनंदन आने से भी अधूरा रह गया, जब तक कि गोपीजन वल्लभ नहीं है तब तक अधूरे है। नंदनंदन दास रूप से भी आराध्य है, सख्य रूप से भी आराध्य है, वात्सल्य रूप से भी, किंतु आधा से अधिक रह गया, जब तक कि गोपियों के वल्लभ नहीं है, उनका रूप तब तक नहीं निखरेगा, उनका भाव नहीं निखरेगा, तब तक वो समस्त अवतारों के अवतारी नहीं होंगे, जब तक कि गोपियों के प्राण वल्लभ नहीं है। इसलिए मूल मंत्र में ही वो गोपी जन वल्लभ का भाव है, इसलिए कहते हैं ये नंदनंदन, केवल नंदनंदन ही नहीं गोपी जन वल्लभ, उसे भी उनका मन नहीं भरा, उनके मुख से बरबस निकल गया राधा नायक नाग, राधा जी के नायक हैं, राधा जी नायिका हैं, स्त्री और पत्नी में वो भाव नहीं होता जो नायक नायिका में होती है, नायक नायिका में नायिका का सम्मान अधिक होता है, नायक नायिका का सम्मान करता है, रुक जाने पर हजार मनाएगा वो, उस समय उसका सुहाग बहुत ऊंचा होता है, मर्यादा मार्ग में विवाह में पत्नी में नहीं। इसलिए कृष्ण ने ऐसा होते हुए भी राधा नायक नागर से, इसलिए नागर बने हैं, नायक बने, नागर बने क्या, राधा जी नागरी और वो नायक नागर, नागरी माने सर्वश्रेष्ठ प्रेम की मूर्तिमान विग्रह, और कृष्ण उस समय में रस के मूर्तिमान विग्रह है, राधा नायक होने पर भी नहीं मन माना तो उन्होंने भजन नागर श्याम नागर है नागर माने आता जो स्त्री के अधीन हो जाए इसको कहते हैं नागर। तो वो अपनी शक्ति लादनी शक्ति के यहाँ पर अधीन बन करके जैसे वो कहते हैं ना स्मरगर लखंडनम मम शिरसि मंडनम देही पदपल्लव मुदा राधा जी को मना रहे वो भाव यहाँ ला रहे। ये महाप्रभु जी के प्रचार का ये मूल विषय है। यदि इसे कोई अछूता रह गया इन चीजों को नहीं समझाते चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए कौन है कोई नहीं समझ। ऐसे जो राधा नायक नागर श्याम है वो यहाँ पर कैसे आए हैं सो सचिनंदन सो माने कौन नंदनंदन गोपीजन बल्लभ राधा नायक राधा नागर वो जो श्याम है सो सचिनंदन वही सचिनंदन के है। चैतन्य महाप्रभु का तत्व यह है। यदि कोई नहीं जानता इस चीज को सचिनंदन क्या है कीर्तन खूब प्रचार किया इतना ही कीर्तन तो एक माध्यम था प्रेम के प्रचार करने का। जैसे कीर्तन से प्रेम का प्रचार न हो जीवों को थोड़ा सा इसकी गंध न लग जाए लोभ न उत्पन्न हो जाए तो महाप्रभु को समझा नहीं इसलिए वो प्रचार प्रचार केवल नहीं है। नदिया पुरंदर नदिया माने वही वृंदावन महाप्रभु जी जब वहां पर अवतरण हुए थे ये वहां पर पहुंच गया प्रचंड रूप में। नदिया नदिया में नौ द्वीप हैं नव द्वीप इसलिए नौ द्वीप एक श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन नौ कीर्तनों का नौ भक्ति के अंगों का एक एक वहां पर द्वीप। गंगा नवद्वीप को छोड़ना नहीं चाहती जैसे जमुना तीन तरफ से ब्रज को चारों तरफ से घेरे हुए इधर से उधर उधर से उधर घूमती रहती हैं अटक जाती हैं जब वृंदावन में देखेंगे वैसे ही गंगा नदी निकलना नहीं चाहती इधर से घूम करके उधर से घूम करके फिर इधर से घूम करके फिर उधर से घूम करके मानो सांप की भांति टेढ़ी मेढ़ी होकर के नवद्वीप में बह रही और उसको नौ आइलैंड समय भी भक्त कर रखा है। उसी नवद्वीप में जैसे यहाँ पर समाल के कुंज हैं वहां पर किस चीज के कुंज हैं कटहल के कुंज हैं आम कुंज हैं जिस पर आमों पर आम के वृक्षों में अभी हम लोग गए थे मंजरी उस समय में आ रही थी मंजरियों के लोग से क्वेल बैठ करके कुहक रही है क्या कहती है गौर गौर कहती है और यहाँ पर क्या कहती है राधे राधे यहाँ पर वही राधे राधे वहाँ पर गौर गौर माने कौन गौरी गौरी कौन है गौरी माने कौन राधा जी वही गौरी है वो गौरी है इसे वहाँ पर गौर गौरी गौरी कर रही है और यहाँ पर वहाँ जाने से ऐसा ही मालूम पता कि ब्रज ही उतर करके यहाँ पर आया है। सूर मुनि गण मनमोहन धाम सबको मोहित कर लेता है और विशेष करके भक्तों का संग हो और उनके संग में जाया जाए तो जरूर जगत के लोगों को चित्त मोहन कर देगा। वृंदावन में अकेले जाइए कुछ भी नहीं दिखेगा और भक्तों के साथ में जाइए सब कुछ वहां पर मिल जाए उसके एक एक रेणु बोलने लग जाएगी गोवर्धन जी बोलने लग जाएंगे जमुना जी बोलने लग जाएंगे कृष्ण की सारी गाथाएं वहां पर सब अपने आप सुनेंगे। गोवर्धन जी के पास में जाएंगे तो गिरिराज जी क्या कहेंगे तुम आए हो अरे 5000 वर्ष तुम पहले नहीं आया हमको अपनी कनिष्ठ उंगली पर 7 दिन तो बैठा और वो जो दृश्य देखे मैंने कभी नहीं देखा क्या देखा गोप गोपियों से वहां पर एकत्रित हुए हैं ससुर के सामने पिता के सामने लड़कियां किसी पुरुष से नहीं बोल सकते वहां पर संकट का एक बहाना लगा करके वहां पर सबको बुला लिया और वहां पर गोवर्धन को उठा करके सभी लोग कृष्ण की तरफ में देख रहे हैं उस समय मिलना किसी के लिए मना नहीं। ऐसे भाव हमने विचित्र विचित्र देखे जो कभी नहीं हमने देखा हमारे कुंजों में देखा। गिरिराज जी वहां की सब गाथाएं अपने आप बोलने लग जाएंगे भक्तों से जय निज कांता ये जो सचिनंदन है ये तो नंदनंदन है, राधा कांत है, राधा मनमोहन है, वो निज कांता, अपनी कांता श्रीमती राधिका। कांता माने क्या? समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कांता, जिसके द्वारा कृष्ण की समस्त कामनाएं परिपूर्ण होती हैं, वो उसको कहते हैं। जगत में कोई कांता दूसरी नहीं है, बस ये राधा जी कांता है। कांति कलेवर, निज कांता कांति कलेवर, अपनी कांता का जो कलेवर है उसकी कांति को लेकर के आए। कलेवर माने उनके शरीरों का जो अंग है, कैसा दिव्य गौर वर्ण, जैसे हल्दी कच्ची, उसको तोड़ दीजिए, तोड़ने पर जो दिखती है ना हल्दी जैसी, एकदम सोने का, या सने को आग में तप्त करके उसको पिघला दीजिए और निर्मल कांति उसकी निकलती है, या विद्युत की कांति हो, तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह, ऐसी ये राधिका जी हैं। उनकी कांति का लेकर के ये जगत में आए। जय जय प्रेयसी भाव विभोर। राधिका जी की चिंता करते करते अपनी प्रेयसी की चिंता, प्रेयसी माने प्रेम की मूर्ति, राधिका जी कृष्ण की प्रेम की मूर्ति है, उसी की चिंता करते 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 डूब गए और वो कृष्ण हो गए राधिका जी। और राधिका जी होकर के कहते हैं कृष्ण 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 ही कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, किंतु किस रूप में कह रहे हैं भूल गए अपने, मैं कौन, राधे 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 कहते कहते, और एकदम एक बार मैं जब मैं अथरा में था, आज से करीब करीब 30 वर्ष पहले, वन महाराज जी की यूनिवर्सिटी थी, वैष्णव यूनिवर्सिटी, उसमें वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े फेमस विद्वान थे उसमें आए थे, उसमें मैं बहुत छोटा सा था, तो उसमें हमको भी बुलाया था, तो मैं भी गया था। उसने वृंदावन के छठी छठे हुए राजमंडलियों के एक एक सुंदर से सुंदर जो पार्ट प्ले करते हैं उनको बुलाया। एक वृंदावन में सबसे जो कृष्ण का जो अच्छा पार्ट करता था उसको, राधा जी का जो पार्ट करता है वो, ललिता जी का, विशाखा जी का जो अच्छा अच्छा पार्ट करने वाले हैं उनको बुलाया। सुंदर से सुंदर नृत्य कर सकते हैं, छठे हुए 10-12 आए, गला क्या सुरीला और कितनी सुंदर, ऐसा नृत्य किया पहले ये सभी लोग देख करके चकित हो गए। और राधा जी क्या कर रही है, बैठ रही हैं, कृष्ण की चिंता कर रही हैं, ललिता विशाखा चारों तरफ में बैठी हैं, एक केले का पत्ता या किसी चीज का पत्ता लिया, अनार की कली को उन्होंने निचोड़ करके रस बनाया और एक फूल की कली से, फूल की कोमल कली से उसको लगा करके कृष्ण के पास में पांती लिख रही हैं। पांती माने क्या, पत्र लिख रही है। शाम को बैठी और कृष्ण की चिंता करते 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 ऐसे विरह में उन्मत्त हो गई, बस चारों तरफ कृष्ण कृष्ण स्फूर्ति होने लगी और होते 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 तन्मय होकर के अपने को ही कृष्ण से, इसको कहते हैं अनुभव है, लीला अनुभव, तन्मय होकर के। साधक को ऐसा ही होगा, करना होगा, भजन करते 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 ऐसे तन्मय हो जाएगा, जगत की सुध नहीं, बुद्ध नहीं, कुछ नहीं, एकदम तन्मय हो जाएगा, इसको कहते हैं साधक। वो भी होगा किसी एक विषय में अनन्य होकर के चिंतन करेगा तब होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। संसार के भी पचड़े पड़े हैं, काम भी पड़े हैं, ये भी है उधर, ये दायित्व उधर दायित्व, दूसरे दूसरे देवताओं की आराधना, उसमें एक आराध्या देवी होंगी कौन, कृष्ण उनके पति हैं, उनसे डायरेक्ट संबंध नहीं। साधक इस भाव में तन्मय होकर के डूबेगा तब इन चीजों को समझेगा, इसको कहते हैं साधन। कीर्तन कर रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताएं आ रही हैं, अन्य करने बैठे भाई, क्लिंग आरंभ किया, इतने में संसार की सब चीजें याद आ गई, वो क्लिंग तो भूल गया, मंत्र भी भूल गया और मन कहां कहां कमर दौड़ रहा है। पांच मिनट के बाद में, दस मिनट के बाद में, आध घंटे के बाद में याद आई, अरे मैं क्या करने बैठा था, फिर आरंभ के इतने में फिर आ गई। ये आराधनाएं नहीं, ये सब अनर्थ है। महापुरुषों के जाग करें, उनके चरण की सेवा करेंगे, धूल की सेवा करेंगे, उनके चरणामृत की सेवा करेंगे, उनकी ये वाणी की सेवा करेंगे, तब ये चीजें आती हैं। इसको कहते हैं साधन। हमको ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये पहले की बातें हैं, बहुत नीचे की बातें, एक तरह से कनिष्ठ अधिकार की बातें हैं, कुछ कुछ मध्यम अधिकार की बात है। ये सब चीजें बहुत ऊपर है। जिसको चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे वो कोटि शक्ति मुहा मुझे, इसलिए क्या बतला रहा था, भूल गया। ब्रेयसी भाव,
आप कथा सुना रहे थे वहां पे, कौन महाराज,
हाँ, तो वहां पर
वो पाती लिखते
लिख रही हैं और एकदम तन्मय होकर के एकदम वहां पर केवल डॉट दिया है कल लिखने के लिए, और कृष्ण की चिंता करते 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 तन्मय होकर के कृष्ण बन गए। अब वो कृष्ण की तरफ से राधा जी को पाती लिख रही हैं, अब क के बदले वो रप चल रही है। रप जाते चलते चलते राधे जी को पत्र लिख रहे हैं, विरह में कृष्ण तेरे बिना मैं कैसे जीवित रहूं, और आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही है, और वो डॉट का केवल चिन्ह लाल लगा, और इधर में हो गया सवेरे। ललिता जी ने उनके हाथ से वो पत्र ले लिया, उसको मोड़ दिया, और केले के पत्ते के जो रेशे होते हैं उनको निकाल करके उसको पीले रंग में रंग करके उसको लगा दिया, लेकर के और फिर धनिष्ठा के हाथ में दिया। कृष्ण ने उसी को बांचा और एकदम तन्मय हो गए। कैसी कैसी उनकी भावनाएं हुई, और उसको उसी को लेकर के हमारे लिए इतना क्या, उनके बसीभूत हो गए, अपने को बेच दिया उनको, अब उनके चरणों में। ये प्रेयसी भाव होता ही होता, जगत में अब दूसरा कुछ ऐसा प्रेम का कोई उदाहरण नहीं है। जिसको में जय ब्रज सहचरी लोचन मंगल, आदमी क्या समझेगा खाक पत्थर और कहां से डूबे हुए लिख रहे हैं। जय ब्रज सहचरी, ब्रज की सहचरी कौन है, ये गोपियां, उनके लोचन का मंगल, उनके आंखों का मंगल क्या है, राधा कृष्ण की ये विलास लीलाएं। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं है, ये हैं कौन, ब्रज के विलासी ये कृष्ण और ब्रज की विलासिनी ये श्रीमती राधिका जी हैं। ये कौन है, दोनों के मिलित रूप है, वही कह रहे ब्रज सहचरी जो गोपियां हैं, कौन है यहाँ पर, राय रामानंद स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और जितने भी भक्त हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब रूप प्रतिमंजर इत्यादि, इनके लोचन के मंगल करने वाले हैं। जय नदिया बासी नयन अमोर, नवदीप में जो प्रकटित हुए हैं, उस समय के प्रकटित हुए थे, वो सब मुक्त महापुरुष लोग नवदीप में आए, बहुत कम लोग बद्ध थे, वो पार्ट प्ले कर रहे थे, महापुरुष को देख करके आनंद में भी भोर हो जाते थे। जय जय श्रीदाम, श्रीदाम भी आए हैं, सुदाम, सुबल, अर्जुन, ये कौन है, श्रीदाम जी राधिका जी के भैया हैं, वो श्रीदाम है। सुदाम वृंदावन में सुदाम जी हैं, और सुबल कौन है, जो राधिका जी का वेश बना लेने पर ऐसे मालूम होता है ये राधिका जी हैं, और कृष्ण से राधा जी का मिलन कराते हैं, उनका संवाद परस्पर देने वाले हैं, बुलाते हैं। महाप्रभु जी की लीला में ये गौरीदास पंडित इत्यादि, ये द्वादश गोपाल लोग हैं, ये सब देखने में पुरुष लग रहे हैं, भीतर से कौन है, ये सहचरी लोग हैं। प्रेम वर्धन नवघन रूप, जैसे मयूर आकाश के रंग को दे करके, घन मेघ को दे करके नाच उठता है, ऐसे ये भक्त लोगों का हृदय नाच उठता है महाप्रभु जी को देख करके। जय रामादि सुंदर, राम माने यहां पर बलदेव जी, राम इत्यादि जो उनके सखा हैं, भाई हैं, भैया हैं, प्रिय सहचर, उनके सहचर में गोचारण के समय में, वन में भ्रमण करने के समय जो सहचर हैं। जय जगमोहन गौर अनूप, अनूप में जिसका उदाहरण नहीं, एक कल्प पहले बस महाप्रभु ही महाप्रभु जी के समान है और दूसरा कोई नहीं। समस्त जीव को विश्व का मोहन मोहन करने वाले जय अति बल बल राम प्रियानुज, प्रिया के अनुज कौन है? प्रिया राधा जी और उनके अनुज ये श्री राम। जय अति बल जय जय नित्यानंद आनंद, ये राम कौन है? ये नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु ही ये राम जो जगत में रमण करते हैं, रमयती इति राम, ये उन्हीं बलदेव जी के लिए है। जय जय सज्जन गण भय भंजन, जो सज्जनों के भय को, सज्जनों के दुख को, सज्जन का दुख क्या है? कृष्ण मिले नहीं, आया जन्म वृथा गया, हमारा कृष्ण भजन नहीं हुआ, कृष्ण नहीं मिले, बस यही सज्जनों का दुख और कोई दुख नहीं, उनको दुख स्पर्श नहीं कर सकता। यदि हम लोगों को ये संसार का दुख नहीं स्पर्श करता है तो उन लोगों की तो बात क्या। जय जय सज्जन गण भय भंजन गोविंद दास अनुबंध, गोविंद दास का ये आशा का अनुबंध है, अनुबंध भाई हमारी प्रार्थना है, आप हमारे ऊपर में हे सची नंदन, हे गौचंद्र, हे राधा जी के नायक श्याम, हमारे ऊपर में क्या कृपा कीजिए, अपनी प्रेयसी का जो राधा जी की हैं उनकी दासी में बना दी, बस यही एक आज यही पर समाप्त हो। ठीक रही राधिका जी है उनके चरण की किंकरी हमें बना दो, बस यही जाओ तुम्हारा कल्याण कल्याण। माधुर्य कादंबनी नामक एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की अत्यंत शिक्षामूलक ग्रंथ का प्रवचन मैंने आरंभ किया था, जिसमें बतलाया था थोड़ा सा उसका रिपीटेशन कर देते हैं, इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। साधारण लोग भक्ति नहीं जानते हैं कि भक्ति किसको कहते हैं। साधारण लोगों की है जैसे श्रद्धा हो गई, भक्ति हो गई, पुष्प उनके चरणों में डाल दिए बस, और उनसे सांसारिक अर्थ रुपया पैसा धन इज्जत उनसे मांग लिया, ये भक्ति है। उनको कुछ प्रसाद चढ़ा दिया, किंतु भक्ति के लिए अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति। भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी ने ये दी जो हमारे संप्रदाय में चल दिया है। भागवत में, वेदों में, उपनिषदों में भक्ति की परिभाषाएं दी गई हैं, किंतु इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने इतनी सुंदर, प्रांजल, सरल, सीधा, लोग समझ नहीं सकें ऐसी परिभाषा दी जो कहीं और नहीं। कृष्ण को जो रुचिकर हो, जो चीज, तन मन और वचन, यही हमारे पास में तीन साधन है। तन मन और वचन से कृष्ण को अच्छी लगने वाली, कृष्ण को सुख हो ऐसी क्रियाएं यदि हो तो इसको भक्ति कहते हैं। तन मन वचन इत्यादि से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको जो रुचिकर चीजें हैं, ऐसी चेष्टाओं को भक्ति कहते हैं। किंतु जब यही चेष्टा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई संसारी कामना वासना न हो और केवल मात्र कृष्ण की भक्ति बढ़े, कृष्ण का प्रेम हो, ऐसी भावना, अन्नाभिलाषिता शून्य, कोई प्रकार की अभिलाषा न रहे, यहाँ तक कि मुक्ति की अभिलाषा भी न रहे, यहाँ तक कि वैकुंठ की भी अभिलाषा न रहे, कृष्ण की सेवा की अभिलाषा बनी रहे, तन मन वचन से उनकी सेवा करें और कर्म ज्ञान योग तपस्या के द्वारा वो भक्ति अच्छा दिख न रहे। ऐसा बड़ा अनुष्ठान किया करोड़ों करोड़ों रुपयों का, जैसे मूल भक्ति की वृत्ति दब गई, ऐसी कुछ नहीं करना है। ऐसा ज्ञान भगवान में मैं मिल जाऊंगा, मुक्ति मुझे चाहिए, ऐसा ज्ञान भी नहीं, इसके द्वारा भक्ति थक जाती है। यहां तक ही इसके ज्ञान की तो बात क्या, तुम लोग सब चेष्टा छोड़ करके हमारी बात को सुनो, न हो ऐसा कर्म करना आरंभ कर दिया, जन्माष्टमी मनाने लगे, लाखों लोगों की भीड़ लगाई और प्रसाद देने में थक्का मुक्की इधर उधर होने लग गया, असल जो भक्ति वृत्ति थी वो छिट गई, चित्त सरस होता, भगवान की सेवा का के लिए कुछ सुनता, ये सब चीजें नहीं हुई, तो इसके द्वारा ढक गया ना, तो ऐसा नहीं है। ऐसी कठोर तपस्या की, तपस्या माने एकादशी व्रत करते हैं, देख रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब हो रही है, एकादशी का निर्जला व्रत करेंगे, पहले दिन सजला, दूसरे दिन निर्जला, तीसरा दिन फिर सजला व्रत किया, ऐसी कठोर की तबीयत खराब भी हो गई और भजन। एकादशी के लिए, जन्माष्टमी के लिए तो छूट है, किंतु और व्रत कोई ऐसा नहीं होने चाहिए जैसे कि भक्ति ढक जाए, भक्ति कम सा अग्रसर होनी चाहिए, ज्ञान योग तपस्या व्रत इत्यादि किसी के द्वारा भगवान का भजन नहीं होगा, केवल मात्र शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, तब वो कृष्ण प्रसन्न हो। इसलिए अब ये इतनी शर्त लाए, जब कृष्ण की सेवा तन मन वचन से हो रही है, हो और उसमें कोई भी अभिलाषा संसारिक वासना न हो, और वह चेष्टा ज्ञान कर्म योग इत्यादि के द्वारा ढका हुआ न हो, तब इसको उत्तमा भक्ति कहा जाता है। जब इस चीज को लक्ष्य रख करके हम आगे बढ़ते हैं तब श्रद्धा, साधुसंग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और तब प्रेम होता है क्रमशः। इसमें हो सकता है कि 10-20 या हजारों जन्म भी लग जाए। इसी को हमने पहले बतलाया था, ये श्रद्धा किसको कहते हैं, निष्ठा किसको कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति किसको कहते हैं, ये सब हमने बतलाया। अब हम लोग श्रद्धा से चले थे, पहले बतलाया श्रद्धा साधु संग से। श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक होती है भगवान की कथाओं को सुन करके, महापुरुषों के मुख से भागवत इत्यादि पढ़ करके लोभमय श्रद्धा होती है कि ऐसा विशुद्ध प्रेम हम लाभ करेंगे गोपियों जैसा या ब्रजवासियों जैसा, एक लोभमय श्रद्धा। और दूसरी होती है शास्त्र शासनमय। शास्त्र कहते हैं कि तुम दुखों से तुम्हारा कभी भी छुटकारा नहीं होगा जब तक कि भजन नहीं करेगा। यदि तुम संसार का सब काम करता हुआ भी भगवान का भजन नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो परम पिता है, उनकी सेवा पड़ती है। यदि सब कुछ किया, सदाचारी है, माता पिता सेवा, संसार का सब धर्म परोपकार सब कुछ किया, भगवान की भक्ति नहीं किया तो तुम्हारा सब कुछ चौपट हो जाएगा। हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम उनके सेवक हैं, कोई समझे न समझे, ये सेवा की उत्कर्षता के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। आगे बढ़ने लगे तो साधु संग आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया, इसके बाद में गुरु, साधु संग के बाद में गुरु की आवश्यकता। जो कैसे हम बढ़ेंगे, गुरु जी ने, संतों ने कहा, पहले तुम हरिनामाश्रय करो, किसी अनुभवी शास्त्र को जानने वाले भजन चतुर, भजन में भी हो, रसिक हो, भावुक हो, संसार में आसक्ति न हो, ऐसे गुरु के चरणों में चरणाश्रय करके उनसे भजन की शिक्षा लेकर के आगे बढ़ो। अनर्थों से ग्रस्त व्यक्ति जो खुद ही भजन नहीं करता वो भगवान के भजन की शिक्षा नहीं दे। गुरु जी के पास में गया, कहा जी आप हमारे ऊपर में कृपा करें। गुरु जी ने थोड़ी सी परीक्षा ली, क्या चाहता है, धन धान्य चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, मैं ये चाहता हूं कि मैं सुख से रहूं भी और भगवान का भजन भी करूं। देखा जी कुछ श्रद्धा है तो प्रसन्न होकर के उसको ये देखा, जैसे ये संसार की ही चीजों को लाभ करना चाहता है तो जी हमारे दुकान में ये चीज नहीं है, आप दूसरी जगह सीधे चले जाए। एकदम सीधी बात, यदि अर्थ की आवश्यकता है, मैं जानता हूं कि अर्थ से कभी भी परमार्थ नहीं हो सकता है, कभी भी शांति और सुख नहीं मिल सकता है, और बड़े बड़े नरेश लोग आए, बड़े बड़े सम्राट लोग आए, कोई कुछ लेकर के नहीं, शांति नहीं होकर के अशांति बढ़ेगी, इसलिए तुम यदि कल्याण चाहते हो तो भक्ति मार्ग का आश्रय करना चाहते हो तो मैं तुमको कुछ सहायता कर सकता हूं। अच्छा हम, मैं, मुझे स्वीकार है, मैं आत्मसमर्पण आपके चरणों में किया, इस दबते हुए संसार की ज्वाला से हमें शांति देकर के हमको कृष्ण की भक्ति की। उसको मंत्र और दीक्षा दी, दिव्य ज्ञान जिसको कहते हैं, तत्वों का सब विचार दिया, सुनने लग गया। इसके बाद में धीरे धीरे अनर्थ दूर होने लगा, अनर्थ अभी अनर्थ है, अभी निष्ठा नहीं है, निश्चयता नहीं है, कैसे भजन करूंगा, घर में रहकर करूं, बाहर में रहकर करूं, ना कहां कैसे करूं, कोई स्थिर नहीं। इसके संबंध में हमने बतलाया था उत्साहमयी घन तरलासन संगरंगरा और सब तरह की चीजें बतलाई, ये सब अनर्थ है। इनके दूर होने पर भी कुछ और चीजें हैं। 10 प्रकार के नमा अपराध हैं, 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं जो भजन में मन नहीं लगने देते। उसके पहले 4 प्रकार के दिखला रहे हैं, ये अनर्थ है। सुकृति उत्थ, दुष्कृति उत्थ, अपराध उत्थ और भक्ति उत्थ। उसमें हमने बतलाया था सुकृति उत्थ माने पूर्व जन्म के ऐसे अच्छे अच्छे कर्म हैं जो आपको इतना प्रचुर सुख लाएंगे जो भक्ति में मन नहीं लगेगा, बार बार उसी में चला जाएगा, सुख में, विलास में, भोग में। दुष्कृति उत्थ वो है पूर्व जन्म हमने बहुत से पाप किए होंगे, इसलिए तबीयत खराब हो जाती है, विघ्न बाधा आती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, उसके विपरीत हो जाता है, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, जीवन मरण इत्यादि, ये सब दुष्कृति उत्थ। अपराध उत्थ, अपराध उत्थ के संबंध में अपराध से जो अनर्थ उत्पित होते हैं, वैष्णव अपराध, गुरु के प्रति अपराध, हरिनाम के प्रति अपराध, शास्त्रों के प्रति अपराध, ये तरह तरह के अपराध हैं, उसके संबंध में भी हमने बतलाया। इनसे सावधान रहना चाहिए। 2 चीज भक्ति में ख्याल रखनी चाहिए, भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं उसको ग्रहण करेंगे, और भक्ति के जो कुछ भी प्रतिकूल हैं उनका हम त्याग करें। अपराध को त्याग करना है। हम थोड़ा सा विचार कर रहे हैं अपराध के ऊपर में, जो सबसे पहले ऊपर में है, वैष्णव के चरणों में किसी प्रकार का अपराध न हो, उनकी अवज्ञा न हो, जान में अनजान में हो सकता है हो जाता है। पहले हम ये देखेंगे कि ये वैष्णव कौन है जिनके चरणों में अपराध होता है, सचमुच में वो वैष्णव है कि नहीं है। यदि वैष्णव नहीं है तो वैष्णव अपराध नहीं होगा, पाप इत्यादि हो सकता है। वैष्णव किसको कहा जाएगा? गृहीत विष्णु दीक्षा को, विष्णु पूजा परुण, जिन्होंने विष्णु मंत्र में दीक्षा दी है, संकल्प लिया है कि मैं भगवान का भजन करूंगा और हरि नाम का आश्रय कर लिया है, किंतु अनर्थ सब नहीं गए हैं, इनको वैष्णव कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। यहां तक कि हो सकता है कि कोई वैष्णव धर्म दिया है और चित्त की दुर्बलता से कुछ अनाचारी भी है, किंतु हरि नाम ठीक करता है, ठाकुर जी की पूजा भी करता है, श्रद्धा उसमें है, राधा कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का भजन नहीं करता और उनसे प्रेम ही चाहता है, कि चित्त तो दुर्बल होने के वजह से कोई दुर्बलता से कोई अनाचारित क्या दिया गया, गीता में बतलाया, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे व्यवस्थो ही सर। यदि कोई अनन्य रूप से कृष्ण का भजन कर रहा है, राधा कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की उपासना नहीं करता ना? तो अपि चेत, 2 इसमें विशेषण लगे हैं, अव्यय है। अपि मैंने वैष्णव में कोई दोष नहीं होता, शुद्ध यदि वैष्णव हो, भजन पराणे हो, तुम्हें कोई भी दुराचार नहीं हो सकता। और अपि एक और भी लगा दिया, जो भजन पराण है उनमें कभी अवश्य ही नहीं हो सकता, किंतु यदि ऐसा हो जाए, साधु रे समन्तव्य, उसे साधु मानो, उसकी निंदा मत करो, उसका संग मत करो, ये बात हो सकता है, किंतु उसकी निंदा मत करो। निंदा करने से अपराध हो जाएगा। उसमें निंदा में भी कुछ विचार नहीं है, निंदा ये स्तुति गर्भ है, द्वेष मूलक है या प्रीति मूलक है? कभी कभी निंदा होती है, जैसे गोपियों ने कृष्ण को चोट चोट का लंपट इत्यादि कहा, धूप्त कहा, काला कहा, अंतर बाहर काला, ये सब कहा, ये प्रतिगर्भ है, ये अपराधी अपराध नहीं। देश मूलक यदि हो तो ये होगा, देश नहीं, वैष्णव में देश नहीं होता। एक चीज को पहले समझिए, कल हमने वहां पर जो बातें की बहुत भक्ति की उत्तम बातें थी, किंतु उस चीज को पाया जाएगा कैसे, इस विचार का ज्ञान नहीं होने से वो नहीं मिल सकता। वो तो लोग दिखला है हमने कल, ये हमारा प्राप्त है, इसको ही हमारा उद्देश्य है। एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ हमारा वो है। अब उसको कैसे पाया जाएगा, कुछ चेष्टा तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आज कुछ बतला रहे हैं। पाप में अपराध में अंतर क्या है, तुम लोग भी विचार करके देखो। पाप में और अपराध में ये अंतर है, पाप शरीर संबंधी या मन संबंधी होता है, अपराध होता है आत्मा संबंधी, भक्ति और भगवान संबंधी होता है। वैष्णव में भक्ति है इसलिए उनकी निंदा करने से तुम्हारा अपराध होगा, वही संसारिक लोगों की निंदा करेगा तो वो पाप हो सकता है, शरीर संबंधी है। इसलिए भगवान का नाम भक्ति, वैष्णव, तुलसी, यमुना, गंगा इत्यादि, ब्रजधाम, ये सब अपराकी तत्व है, भक्ति को देने वाले हैं शास्त्र, ये सब भक्ति को देने वाले, इसलिए इनके प्रति की ही अवज्ञा, उनकी निंदा, ये अपराध हो जाएगा। और साधारण में दैहिक संबंध जिसका है, मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है किसी के साथ में, और वैष्णव नहीं है, तो ये सब पाप हो, चोरी करना, किसी को मारना पीटना, किसी की हिंसा करना, किसी की स्त्री को भगा ले जाना, किसी का घर में आग लगा देना, ये सब पाप है। और जहां भक्ति का आत्मा का संबंध है,